मंगलमय मंगलकरण वीतराग विख्यान नमो ताहि जाति भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। महावीर भगवान की बोले, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज की, अपन अपने जीवन के कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए इस बात पर निरंतर विचार कर रहे हैं। हमने विचार किया है कि हमारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए, हमारा ज्ञान समीचीन होना चाहिए, हमारा आचरण अहिंसक होना चाहिए, तब हम अपने जीवन को जैसी ऊंचाई हम देना चाहते हैं वैसी दे पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे। हमने दृष्टि की निर्मलता और सम्यक दर्शन पर कई तरह से विचार किया है और हमें लगता है कि हम अपने पुरुषार्थ से प्रयास से अपने इस जीवन में वह दृष्टि की निर्मलता हासिल कर लेंगे। हमारे भीतर दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करने का भाव, एक ललक पैदा हो गई है, ये मान के चल रहा है। दृष्टि की निर्मलता के साथ जो चीज आपो आप हमें प्राप्त हो जाती है वह भी जानना चाहिए, वह है आत्मज्ञान, जिसे कि अपन समीचीन ज्ञान कहेंगे। आज हमारे देश में जबकि हम स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, हम देखें तो हमारे यहाँ पर देश में ज्ञान की बातें जानने वालों की संख्या और ज्ञान के बारे में बताने वालों की संख्या अत्यधिक है। जितने ज़्यादा लोग यहाँ ज्ञान की बातें जानते हैं या जितने ज्यादा बताने वाले लोग हैं ज्ञान की बातें, उतने ही कम लोग वास्तविक ज्ञान से परिचित हैं। अज्ञानता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने वाले और ज्ञान की बातें जानने वालों के जीवन में ज्यादा अंतर देखने नहीं आता। अकेले ज्ञान की बातें जान लेने से कोई ज्ञानी हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, आत्मज्ञान या समीचीन ज्ञान को उपलब्ध कर ले, ये तो एक भ्रम है। बहुत सारी पोथियां पढ़ लेने अकेले से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, या ज्ञान की बहुत सारी बातों से परिचय हो जाने पर दूसरे को बताने के लिए कि मैं इतना जानता हूं ऐसा ज्ञान हासिल कर लेना भी अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाता। और हुआ यही है, हम स्वाधीन तो हो गए, दूसरे की सत्ता से लेकिन हम अपने ही कर्मों से स्वाधीन नहीं हो पाए। हम आज भी उतने ही कर्माधीन हैं जितने कि हम पहले पराधीन थे। हमने अपने कर्मों से बचने के लिए, कर्म को काटने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए कोई ज्ञान हासिल नहीं किया, कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई। वास्तव में जो ज्ञान श्रद्धा और आचरण से समन्वित है वही ज्ञान समीचीन है, लेकिन ऐसे समीचीन ज्ञान को प्राप्त करने की ललक अपने भीतर नहीं है, होना चाहिए। बहुत प्रकार की बातों का परिचय, सारे संसार की बातों का परिचय अगर है और यदि अपने आत्मा के स्वरूप से अपन बेखबर हैं तो भैया अपना वो सारे संसार को जानना अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाएगा। जो एक गम जाने सो सब्बम जाने, जो एक गम अपी ना जाने सो सब्बम ना जाने, ऐसा आचार्य भगवंतों ने उल्लेख किया है। जो एक को अपनी आत्मा को जानता है वो मानो कि सबको जानता है, लेकिन जो एक अपनी आत्मा को नहीं जानता उसका सबको जानना कोई लाभदायक नहीं है। आप स्वयं विचार करें, अपन सकल गेय की विनती पढ़ते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, तो उसमें क्या लिखा, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसिनी। कैसे हैं हमारे भगवान वीतराग सर्वज्ञ हृदयोपदेशी, उनके भीतर सब संसार को जानने में सक्षम केवल ज्ञान है, लेकिन वे अपने आत्मा के स्वरूप में लीन रहते हैं। सबको जानते हैं लेकिन अपने से बेखबर नहीं है। अपन तो बहुत सारी बातें जानते हैं लेकिन जानने वाले को जानते हैं, ये अपनी बेखबरी, इस तरफ अपना ध्यान जाना चाहिए। ना अपन देखने वाले को देख पाते हैं, ना जानने वाले को पहचान पाते हैं। अपने को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए कि ये कौन है जो कि जानने की जिज्ञासा प्रकट करता है। मैं उसे ही जानूं, मैं उस चेतना का अनुभव करूं। अकेले दो बातें चार बातें पोथी में से पढ़ करके या किसी और से सुन करके ज्ञानवान अपने को समझना अपना भ्रम ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोथी नहीं पढ़ना चाहिए और ज्ञान की बातें नहीं सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है पोथी पढ़ना भी और ज्ञान की बातें सुनना भी, लेकिन इतना करके ही अपन को अपनी इति नहीं समझना चाहिए, अंत नहीं समझना चाहिए। हमें एक कदम आगे रखकर उस पोथी में बताए गए ज्ञान या दूसरे के द्वारा सुनी गई ज्ञान की बातों को अपने आचरण में तब्दील करने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। ज्ञान वही श्रेष्ठ है जो आचरण बन जाता है, वरना तो ज्ञान की बातें सिवाय उपद्रव के और कुछ उत्पन्न नहीं करती। अभी मैं पढ़ रहा था एक लेख कि हम सब यात्रा कर रहे हैं, मानो नाव में बैठ करके, ईमानदारी की नाव है जिसमें जितने लोग बैठे हैं वे सब भी ईमानदारी की चर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब नाव में बैठे थे तभी उस नाव में पानी भरने लायक दो छेद अपने आप नहीं हो गए थे, अपन ने किए थे। किस चीज के हैं वो छेद? बेईमानी के, अज्ञानता के छेद उसमें अपन ने खुद किए हैं, और कहने को है कि हम ईमानदारी की नाव में बैठे हुए। आज वर्तमान में हमारे ऐसे दोहरे आचरण से ही न हमारे लिए कोई कल्याण का मार्ग मिल रहा, न हमारे माध्यम से किसी और को कल्याण का मार्ग मिल रहा। बातें ईमानदारी की हैं लेकिन जीवन बेईमानी से जी रहे हैं। ये दोहरा मापदंड अपन ने अपने जीवन का बना रखा है। गीत तो गाएंगे कमल के लेकिन रहेंगे कीचड़ में ही। तो भैया ऐसे में क्या अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा? ये तो सिर्फ एक कंसोलेशन है। दुकान पर बैठ करके बेईमानी करेंगे और अपन शास्त्र सभा में बढ़िया बढ़िया बातें सुन करके और अपने आप को सांत्वना देंगे कि हम तो इतना जानते हैं आत्मा का स्वरूप ऐसा है, इतने अकेले से काम हो जाएगा क्या? मुझे कषाय नहीं करनी चाहिए, मुझे पाप नहीं करना चाहिए, ये मुझे ज्ञान है। लेकिन जब मौका आता है कषाय करने का और पाप करने का तो मैं चूकता नहीं हूं, मैं कर लेता हूं। तो मेरे ज्ञान का औचित्य क्या है? क्या वास्तविक ज्ञान है? वो तो सिर्फ ज्ञान की बातें मुझे मालूम है, पर मेरे भीतर जो ज्ञान आना चाहिए अभी आया नहीं है। मुझे इन ज्ञान की बातों से अपने भीतर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। एक भिखारी था, होशियार था, लेकिन वो चौराहे पर खड़ा हुआ और कागज की गिट्टी बनाए हुए घूरे में से उठाए होंगे उसने सब कागजों को एक सा करके और इतने गिड्डी बना ली थी, उसमें रबर बैंड भी लगा लिया था उसमें, और वो कागजों को गिन रहा था 1, 2, 4, 15, 25 और साथ में एक फटा हुआ कहीं पर किसी का कपड़े का टुकड़ा पड़ा होगा वो उसके हाथ लग गया। उसने उस कपड़े के टुकड़े को उठा लिया और वो हाथ में कागज का पुलंदा लिए हुए और दूसरे हाथ में अपने उसको झंडी बना करके और फेरा रहा था। लोगों की दृष्टि में तो वो भिखारी पागल ही था, तो लोग उसको चिढ़ा रहे थे कि देखो तो कागज की टुकड़ा को रुपया समझ रहा हो और लत्ता को वो झंडा समझ रहा हो कपड़ा के टुकड़े को, बताओ तो कैसा पागल है, है? तो सब लोग उसको चिढ़ा रहे थे, भाई समझा रहे थे कि देखो ये तो कागज के टुकड़े हैं, रुपए कहां हैं, और तुम ये सोच रहे हो कि मेरा झंडा सारे संसार में फैला हुआ है, सो ये तो झंडा नहीं है, ये तो कपड़े का टुकड़ा है। उसने कहा भिखारी ने कि करते तो बातें तुम बड़ी समझदारी की हैं, सब लोगों से कहा, भीड़ से कहा कि करते तो तुम बात बड़ी समझदारी की हो, मैं भी समझता हूं कि ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, रुपए नहीं है, और ये कपड़े का टुकड़ा है, ये झंडा नहीं है, लेकिन हम सबके भीतर यही तो भाव बैठा हुआ है कि मेरे पास धन संपत्ति अटूट हो और मेरा ही शासन, मेरा ही झंडा सारे देश में फहराए, ये दो ही चीजें नहीं है। हमारे अपने जीवन में हम जितनी बढ़िया बातें जानते हैं, जितनी ज्ञान की बातें जानते हैं, उतने ही अज्ञानता पूर्वक अपना जीवन जीते हैं। अपन को हंसी आएगी लेकिन कितनी बड़ी बात उस व्यक्ति ने कह दी कि हमारे जो रुपए हैं वो भी क्या हैं, गिनते रहते हैं लोग और उस पर रिंग डालते रहते हैं कि 1000 हो गए, 5000, 10000, 25000, लाख रुपए हो गए, लेकिन सिवाय कागज के टुकड़े के अलावा और क्या है? कभी सोचा? ठीक है, उन पर मोहर लगी है इसलिए उनकी कीमत है। सो हम अपने दैनिक कार्यों के लिए, अपने दायित्व के निर्वाह के लिए, उसके कर्तव्य के पालन के लिए उन रुपयों का उपयोग भी करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन उन रुपयों से अपने आप को धनवान समझते हैं, ये तो अपना भ्रम है। ऐसे ही अपने भवन पर स्वतंत्रता के लिए झंडा फहरा लेने अकेले से हम स्वतंत्र हो गए हैं, ऐसे मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अपन अपनी कसायों और पापों से, अपनी अज्ञानता से क्या मुक्त हो गए, क्या स्वतंत्र हो गए? हमें झंडा फहराते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो मैंने सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े को कलर कर करके और सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा करके और उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। वास्तव में मैं भी ऐसे ही, जैसे कि एक कागज को बस के जैसे कि कागज को मोहर से कीमती बनाया जाता है, जैसे कि कपड़े के टुकड़े को रंग देने से विशेष प्रकार के सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया जा सकता है, क्या ऐसे ही मैं अपनी भावनाओं की मोहर से अपने ज्ञान को, अपने आचरण को अच्छा सम्मानजनक बनाना चाहूंगा? मैं अपने को इस रंग में रंगूंगा जिससे कि मैं एक कपड़ा जब सम्मान पा सकता है उसका टुकड़ा, तो मैं यहां पर सम्मान, कौन सा सम्मान? अनंत और सिद्ध परमेष्ठी जिस सम्मान को प्राप्त करते हैं, वो सम्मान, वो आदर, वो पूज्य भाव, वो वीतरागता जिससे पूज्यता आती है, मैं वो हासिल करूं? क्या समीचीन ज्ञान अपना ये नहीं कहलाएगा? अपन जिसको समीचीन ज्ञान मान रहे हैं, पढ़े लिखे पना मान रहे हैं कि हम तो बहुत विद्वान हैं, नहीं भैया, अपन भ्रम में हैं। वास्तव में विद्वान वो हैं, ज्ञानी वो हैं जो कि अपनी देह को और आत्मा को अलग अलग मानते हैं। और कैसे मानते हैं? जैसे कि तिल में तेल व्याप्त होकर के रह रहा है, ऐसे ही इस देह में मेरी आत्मा व्याप्त करके जिसका स्वभाव वीतरागता है और इस देह में वो व्याप्त है, मैं तो राग द्वेष करता हूं, मैं अपने आत्मा के स्वभाव को क्षण भर भी महसूस नहीं कर पाता हूं, कैसा है मेरा ज्ञान? दुनिया भर का मुझे ज्ञान है, मेरी आत्मा की वास्तविकता का रियलाइजेशन मुझे नहीं है। होना चाहिए 24 घंटे में कुछ क्षण तो ऐसे हो जिसमें कि मैं अपने आत्मा के वीतराग स्वभाव को जान गया हूं तो उसका अनुभव कर सकूं, मैं कषायों को मंद कर सकूं, मैं अपने अज्ञान को दूर कर सकूं। ऐसे कुछ क्षण तो अपने जीवन में होने चाहिए, तब अपना वो ज्ञान सार्थक होगा। सूडो नॉलेज से कुछ नहीं होगा। ज्ञान का भ्रम हो जाने से हम ज्ञानी हो जाएं, ऐसे धोखे में अपने को नहीं रहना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, अरहंते सो भक्ति सम्मतम तेसी मधो मधिगमो नानम सीलम विषय विरागो नानम पुन केरी सम भणिदम। अरे भाई, अरहंत भगवान के प्रति जो अत्यंत प्रशस्त राग है, श्रद्धा है, भक्ति है, वही दृष्टि की निर्मलता है, और जो आत्मा का ज्ञान है वह कैसे प्राप्त होता है? जब हम पंचेंद्री के विषयों से विरक्त होते हैं, इसके अलावा और ज्ञान क्या चीज है? ऐसा ज्ञान जो कि हमें पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त कर दे, आचार्य भगवंतों ने उसे समीचीन ज्ञान नहीं माना। उस ज्ञान को समीचीन माना है जो हमें संसार की वास्तविकता, विषय और भोगों की वास्तविकता का एहसास करा दे और उनसे विरक्त करा दे। सीलम विषय विरागो, हम पंचेंद्री के विषयों से विरक्त हो जाएं, उदासीन हो जाएं, यही ज्ञान समीचीन है। लेकिन हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि इतनी तो ज्ञान की बातें हम जानते हैं, जरा सा कोई पूछे, अरे तुम्हें नहीं मालूम, हमें मालूम है। अल्लु, हम बहुत जानते हैं, हम समझदार हैं, तुम तो भाई नए नए हमें समझा रहे, तुम हमने सोई बहुत बहुत चतुर्मास करवाए महाराजों के, हमें बता रहे तुम, हम तो जानते हैं। लियो, जरा जरा सी बात में अपन अपना अहंकार बढ़ा लेते हैं। क्या वास्तविक ज्ञान है? अपन को स्वयं विचार करना चाहिए, क्या मेरा ज्ञान समीचीन है जो कि मैं कषायों में प्रवृत्त हो रहा हूं, जो कि मैं पंचेंद्री के विषयों में प्रवृत्त हो रहा हूं, क्या मेरा ज्ञान समीचीन है? मुझे अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। किसी और के कहने से तो अपने को तकलीफ होगी कि भैया दूसरे कह रहे थे कि भाई तो बहुत अज्ञानी है। ऐसा अगर किसी को अज्ञानी कहेंगे तो जिसको कहा जा रहा उसको तकलीफ होगी। लेकिन व्यक्ति अपने आप को स्वयं अज्ञानी कहे कि हां वास्तव में मैं बहुत निरक्षर हूं, मेरे भीतर तो अभी आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, मैं पढ़ा ही लिखा नहीं हूं, मैं भौतिक विषयों के बारे में तो बहुत जानता हूं लेकिन आध्यात्मिक अंधापन मेरे अंदर बहुत है, अभी आध्यात्मिक रूप से मेरे भीतर समता भाव नहीं आया, अभी तो मैं सुख में बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं और जब दुख का अवसर आता है तो अपने धर्म से विचलित होकर के बहुत डिप्रेस हो जाता हूं। यही होता है कि नहीं? मेरे ज्ञान से मैंने क्या लाभ लिया, ये जरा सा विचार करने की बात है। हम अपने ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें जो कि हमें इन चीजों की वास्तविकता का एहसास कराए और इन चीजों से विमुख करे जो हमारे लिए कष्टकारी हैं, जो हमारे संसार को बढ़ाने वाली। आचार्य भगवंतों ने तो ज्ञान का फल यही लिखा है, अपन ने विचार भी किया है कि जिससे मेरा राग द्वेष घटे, जिससे मेरा अज्ञान घटे, जिससे मेरी प्राणी मात्र से मैत्री हो, प्रेम भाव जागृत हो, अहंकार ना आवे, वही ज्ञान का फल है, वही ज्ञान सच्चा है, श्रेष्ठ है। लेकिन प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव कहां आता है? जरा सा विचार करें, अगर दया और करुणा का भाव आता होता तो अपन क्यों अपने सुख के लिए, जरा जरा से सुख के लिए और जीवों के हिंसा में प्रवृत्त होते, जीवों के घात करने में प्रवृत्त होते? अपने ज्ञान में अभी समीचीनता लाना अपने को जरूरी है। हम अपने ज्ञान को समीचीन बनाएं ताकि उसमें विवेक जागृत हो सके अपनी चेतना में, और अपने राग द्वेष को कषायों को अपन घटा सकें। प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव आवे। भैया भाव के लिए कह रहा हूं, सिर्फ अपन कितना यथाशक्ति दूसरे की मदद कर पाएंगे ये बात जिदी है। हम जितनी कर पाए यथाशक्ति दया और करुणा पूर्वक दूसरे की प्रति मदद का भाव तो हमारे भीतर बना रहे, कितनी कर पाएंगे मदद ये तो जैसा वातावरण होगा, जैसी हमारे पास साधन होंगे, जैसी हमारी योग्यता होगी वैसा ही कर पाएंगे। लेकिन सुबह शाम अपने भीतर इस तरह का भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, कि मैं प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त बन सकूं, मेरे माध्यम से किसी का अकल्याण ना हो। जैसे कि अब भी महाराज ने कहानी सुनाई कि मैं अपने परिवारजनों के प्रति भी इस तरह का भाव रखूं कि भैया कल्याण के मार्ग पर लगें और अपना कल्याण करें। हम खुद रात में खाएं और बच्चों को कहें कि अबे तो तुम पढ़ लो, जो बाद में कर लियो धर्म आरम जी, ठीक है ज्ञान बताइए आप, अबे तो तुम अच्छे नंबर ले आन के और पढ़ो, धर्म आरम बाद में हो जाए, अबे रात्रि आती में छूट पे तुमसे, तुम तो सब खाई होते हॉस्टल में जैसो भी। यही है, ये अपना ज्ञान समीचीन है, अपन स्वयं भी कर रहे हैं और दूसरे को भी प्रेरित कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि देखो भैया हम तो नहीं छोड़ पाए, मनो तुमसे जित तो बन सके सो तुम रात में छोड़ने का प्रयास करना। अपन ऐसा नहीं कहते, उससे विपरीत ही अपन भी स्वयं भी करते हैं, पतित होते हैं और दूसरे को भी पतित करने के लिए उपाय बताते हैं। भैया हम कितने पतित हैं इसका एहसास हमें हो और हमारे माध्यम से कोई पतन का मार्ग ना अपना ले, हमें निमित्त ना बना ले, इस बात का भी हमें ध्यान रहे। हम हमेशा कहते हैं कि भैया कम से कम रात्रि में सामूहिक रूप से हम भोजन इत्यादि तो ना करें, जिससे कि सबको मैसेज मिले कि करना चाहिए, सब करते हैं रात में भोजन। आपको उदाहरण सुनाऊं इंदौर का, 96 के पहले का है। वहां पर बोहरा समाज की ओर से एक बहुत बड़ा भोज होने वाला था, मांसाहार जिस भोज में दिया जाने वाला था, और उस मांसाहार के अरेंजमेंट के लिए इतने जीवों को मारने का प्रावधान रखा गया था कि जिसे आंकड़े सुनकर के लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा कि इतना सामूहिक हिंसा का काम हमारे नगर में होगा, अपन को सचेत होकर के समझाना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ये नहीं कहा किसी ने, इतना तो समझदारी थी, वरना एक ही भाषा जानते अपन, अपन खुद करते रहेंगे, दूसरे का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अपन को जाके उनसे निवेदन करना चाहिए कि भैया कम से कम आपका भोजन जो भी हो, जैसा भी आपको करना हो, अपने अपने घर में करो, लेकिन भैया सामूहिक रूप से तो इस तरह का कार्य ना करो। इस बात की रिक्वेस्ट के लिए सब समाजों की ओर से लोग अलग अलग गए और उनसे निवेदन किया। जैन समाज की ओर से भी आप बुरा नहीं मानना, 5 लोग गए थे, और जब उन्होंने ये बात रखी कि कम से कम हमारे निवेदन पर थोड़ा ध्यान दें, आप जो भी खाते हैं जैसा भी करते अपने घर तक ही सीमित रखें, सामूहिक भोज के रूप में जीवों की हिंसा से प्राप्त होने वाले भोजन को आप वर्ज रखें, इतना हमारा निवेदन स्वीकार करें। तो उन्होंने फौरन निर्णय लिया कि आप अहिंसक समाज के हैं, इसलिए हम आपकी बात का सम्मान करते हैं और हम निर्णय लेते हैं कि हम सामूहिक रूप से मांसाहार नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे भी एक निवेदन करते हैं, आप अहिंसक हैं बहुत अच्छी बात है, आपका सिंबल है, आपकी पहचान है कि जैन है तो रात में नहीं खाएगा, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप इसी मंच से यह घोषणा करके जाएं कि इंदौर में जितने जैन समाज के लोग हैं, देश में नहीं कह रहा हूं, आप जितने जैन हैं कम से कम इतना संकल्प करें कि वे सामूहिक रूप से रात में नहीं खाएंगे। अब सबके चेहरे झुक गए, सब जने कहने लगे हम अपनी तो कह सकत, लड़का की नहीं कह सकत, वो ब्याह में काकर है। अब ले, अब क्या रहा, क्या इज्जत रही, अपन इतना भी निर्णय नहीं ले पाते अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी, कि नहीं हम कम से कम सामूहिक रूप से अपनी पहचान को नष्ट नहीं करेंगे। हमने इंडिविजुअली तो अपनी पहचान नष्ट कर ही दी है, अब कम से कम एक चीज हमारे हाथ में है कि हम सामूहिक रूप से अपनी पहचान को बनाए रखेंगे। हम समूह में बैठ करके ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिनसे कि मैसेज गलत जाए, हम अपने जीवन में पतन के लिए दूसरे को निमित्त बने ऐसा भाव नहीं लाएंगे, ऐसा कार्य नहीं करेंगे, हम स्वयं पतन की तरफ हैं ये अलग बात है, लेकिन हमारे माध्यम से दूसरा भी गलत रास्ते पर चले हम ऐसा नहीं करेंगे दिखा करके। इतना भाव तो अपने पास होना चाहिए, इतना ज्ञान तो अपने पास होना चाहिए, इतना विवेक तो अपने भीतर जागृत होना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण का भाव अपने भीतर अगर आता है तो अपने ज्ञान के माध्यम से अपन ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे को गलत प्रेरणा मिले और उसका कल्याण हो। भैया एक छोटी सी घटना जो हमेशा सुनाता हूं, 2 पंडित थे, एक निमाई पंडित और एक रघुनाथ पंडित, दोनों बचपन में एक ही विद्यालय में एक ही गुरुजी से शिक्षा हासिल करके पढ़ाई पूरी करके अपने अपने घर चले गए थे। वर्षों व्यतीत हो गए, निमाई पंडित अगर देखा जाए तो अपने परिवार की अपेक्षा से गरीब परिवार के थे, और रघुनाथ पंडित बहुत धनवान फैमिली को बिलोंग करते थे। क्या हुआ,
विद्वत्ता में दोनों बराबर थे, धन पैसे में अंतर जरूर था, लेकिन विद्वत्ता में दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ के थे। दोनों ने सोचा कि अपन कोई ग्रंथ लिखें और राजा साहब को भेंट करेंगे, जिससे कि राजा प्रसन्न होकर के और अपने को सम्मानित करेगा। निमाई पंडित ने भी एक ग्रंथ लिखा और रघुनाथ पंडित ने भी ग्रंथ लिखा। संस्कृत का ग्रंथ था, अपनी अपनी पोथी, पहले तो पोथी कहलाती थी, वेस्टर्न में बांध करके पन्ना पन्ना धल लेते, जब छापा खाने नहीं आते अपने हाथ से लिख लाओ। तो छापा खाने नहीं थे तो एक दृष्टि से तो ठीक नहीं था, लेकिन एक दृष्टि से तो ठीक था कि कम से कम पैर रख करके बाइंडिंग तो नहीं होती थी शास्त्रों पर। विचार करना कवि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए छापा खाने, लेकिन छापा खाने में अभी मेरे से प्रश्न पूछा गया कि जब किताब छपती है उसके जो प्रूफ हैं उनका क्या करें, जो रिजेक्ट हो गए, जो प्रूफ रीडिंग में सुधारे गए हैं उनमें भी तो धर्म की बातें हैं, किताब तो अच्छा है। हाथ से लिखे हुए दोनों अपने अपने ग्रंथ कपड़े में लपेट करके चले घर से, और ऐसा हुआ संयोग कि जब नदी के किनारे पहुंचे, क्योंकि नाव से उस पार जाना पड़ेगा राजा से मिलने, तो दोनों जन एक ही नाव में बैठने के लिए नदी किनारे पहुंचे। बरसों के बाद दोनों मित्र मिले थे, बड़े प्रसन्न हुए मिलकर के, गदगद हो गए, गले मिले, बातचीत शुरू हुई। वर्षों से बाद मिले थे, कैसे हो रघुनाथ पंडित, रघुनाथ पंडित ने भी कहा कि भाई निमाई कैसे हो। राजी खुशी भी पूछ ली, क्या कर रहे हो आजकल? तो रघुनाथ पंडित ने कहा कि भाई मैंने तो एक संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, जिसे भेंट करने के लिए राजा साहब को जा रहा हूं, वो प्रसन्न होकर के मुझे सम्मानित करेंगे। बस इतनी सी बात सुनकर के निमाई पंडित के होश हवास गायब हो गए, चेहरे पर म्लानता आ गई, निराशा छा गई। जो मित्र से मिलने पर इतनी प्रसन्नता थी वो इतनी सी बात में गायब हो गई। ये बात रघुनाथ पंडित से छिपी नहीं रही, उनके समझ में नहीं आया कि हमारी इतनी सी बात कहने पर, हमारे तो मित्र हैं, उनको तो वो तो प्रसन्न होंगे कि मेरा मित्र इतना बढ़िया ग्रंथ लिख रहा है, इसका स्वभाव तो ऐसा नहीं है, कुछ और बात होगी, पता लग जाएगा। दोनों नाव में बैठे हैं, निमाई पंडित की गोद में भी एक ग्रंथ है और एक ग्रंथ रघुनाथ पंडित की गोद में है। देखते देखते ही दोनों अपने अपने ग्रंथ को रखे हुए हैं, और रघुनाथ पंडित ने धीरे से निमाई पंडित का ग्रंथ अपनी गोद में उठा लिया। निमाई पंडित के ले क्यों, उसमें तुम्हारा ग्रंथ श्रेष्ठ है, तुम विद्वान हो, मैं तो ऐसे ही लिख लिया था, मैं भी सोच रहा था कि राजा को अगर पसंद आएगा तो राजा मुझे सम्मानित करेगा, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि तुम्हारे श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसे ही सम्मानित किया जाना चाहिए, वही सम्मान के योग्य है, मेरा तो बहुत हल्का सा छोटा सा ग्रंथ है, आपके ग्रंथ के सामने इसकी क्या औकात। ऐसा विचार निमाई पंडित ने अपना रघुनाथ पंडित के सामने व्यक्त किया, और निमाई पंडित का शास्त्र रघुनाथ की गोद में है और अपना भी शास्त्र है रघुनाथ पंडित का, जितने में कि कुछ निमाई पंडित समझ पाते, रघुनाथ पंडित ने अपने शास्त्र को नदी के हवाले कर दिया। अब गोद में सिर्फ निमाई पंडित का शास्त्र रह गया है, और बड़ी प्रशंसा में कि कितना बढ़िया लिखा हुआ है ऐसा कह रहे हैं। हाथ पकड़ते पकड़ते निमाई पंडित ने आंसू आ गए कि क्या करते हैं आप, आपका इतना श्रेष्ठ ग्रंथ आपने नदी में बहा दिया। रघुनाथ पंडित ने क्या कहा कि व्यर्थ है ज्ञान मेरा अगर दूसरे को उससे तकलीफ होती है तो। मैं तुम्हारे चेहरे की निराशा और म्लानता नहीं देखना चाहता, ऐसे तुम्हारी खुशी देखने के लिए मैं 100-100 ग्रंथ लिख करके नदी के हवाले कर सकता हूं। जब यह सुना तब निमाई पंडित को लगा कि वास्तव में रघुनाथ विद्वान है, पंडित होने लायक हैं। अपन अपने ज्ञान की तरफ देखें कि क्या ज्ञान का अहंकार दूसरे को नीचा दिखाने में काम आ रहा है, या कि अपने ज्ञान से अपन अपने जीवन को और आसपास के परिवेश को सुगंधित बनाने और ऊंचा उठाने में निमित्त बन रहे हैं। जैसे कि रघुनाथ पंडित ने देखते देखते ही अपने श्रेष्ठ ग्रंथ को भी निमाई पंडित की खुशी के लिए नदी के हवाले कर दिया, क्या ऐसा दया और करुणा का भाव अपने पास ज्ञान के साथ है? भैया, अगर ज्ञान के साथ ऐसा भाव भी अपने भीतर आ जाए तो अपना ज्ञान सार्थक हो जाए, वरना तो ज्ञान की बातें बहुत लोगों के पास हैं जो कि सिर्फ उपद्रव करती हैं, अपने जीवन को भी नहीं ऊंचा उठा पाती और अपने उस ज्ञान की बातों के माध्यम से दूसरे का जीवन भी ऊंचा उठ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान वास्तव में वही सच्चा है जो संसार से विरक्त करके अपने को भी और दूसरे को भी कल्याण के मार्ग पर लगा देवे। ऐसे ही आत्मज्ञान को अपन उपलब्ध करें, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर ज्ञान विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में अच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूं,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता वो,
दिशा का सन्नाटा वन में वन चारे चरते हूं,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तेरु तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला मरते वाणी मानो मरते हूँ फूल घड़िया,
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलिया,
तुम साधाने क्या कोई हो जग को दे दे जग की निधिया,
रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम,
चंदन तंबुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप पलार्घ के,
रमल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि राज महम,
ओम रेम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भूमिसागर महाराज चरणों में अर्घ्य निर्पणित स्वाहा।
मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु शिव कानी है,
क्षण द्रव्य ज्ञान वेखो बंदे विधि भा
बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो भव्य उर आनी है
जहां तहां तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जीवनवाणी है
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा दे सुगो दो हे दिन वाणी भारती तो ये जपों दिन रहन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन।